प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने एक श्रोता मित्र से। तो आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ श्रोता श्री रतन जैन जी। रतन जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
रतन जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, वो क्या क्या करते हैं।
मेरा ऐसे रेडियो में नाम आता है मोधापारा रायपुर से, क्योंकि वो एक प्रकार से वो पहचान बन गया श्रोताओं के बीच में। लेकिन मैं जो वर्तमान में अभी रहता हूँ रायपुर में, MMI हॉस्पिटल है, उसके पीछे लालपुर है क्षेत्र का नाम, वहाँ पर जैनम हाइट में मैं निवास करता हूँ, वहीं पर मेरा मतलब निवास स्थान है।
और अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है परिवार में?
परिवार के वर्तमान में परिवार के मेरे साथ मेरी माता जी हैं, जो 88 ओल्ड 88 साल की हैं।
वाह।
और मेरी पत्नी है कोकिला जैन
जी।
दो बेटे हैं, बड़ा वैभव
जी
और छोटा चिराग। वैभव के बारे में मैं बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल वो TCS कंपनी सिंगापुर में कार्यरत है।
अच्छा जी, बहुत
अच्छी
बात।
और हाँ, सिंगापुर में कार्यरत है, 2 साल हो गए। और सौभाग्य से हमको अभी 7 जुलाई को मैं और मैडम सिंगापुर की यात्रा पर हम जाएंगे, सिंगापुर 7 जुलाई को 1 महीने के लिए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से जाकर घूमकर आइए। क्या जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की अच्छी चीजों को भी हम ग्रहण करके वापस अपने देश आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप जाने वाले हैं। पर रतन जैन जी, आपने बताया कि आपके बच्चे क्या क्या करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप क्या क्या करते थे।
हाँ मैडम, एक बात, अब मैंने अपने बड़े बेटे का परिचय कर दिया। छोटा बेटा जो है चिराग
जी,
वो CA है, और यहाँ पर न्यू राजेंद्र नगर में चिराग रतन जैन CA एसोसिएट नाम की ऑफिस है, उनकी ऑफिस है। मेरा बेटा चिराग जैन CA है।
बहुत अच्छी बात है, आपके दोनों बच्चे सेटल्ड हैं और आपने उनको इस लायक बनाया, इसके लिए आप बधाई के पास हैं, क्योंकि माता पिता की तपस्या ही बच्चों को सफल करती है। वो जो संस्कार और शिक्षा देने के लिए जो वो दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो उनको ऊंचाइयों तक ले जाती है।
हाँ।
तो हम यहाँ पर अपना प्रश्न फिर से दोहराते हैं कि बच्चों के बारे में आपने बता दिया, अपने बारे में नहीं बताया कि आप क्या करते थे।
जी देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। क्या है, मैंने प्राइवेट डिपार्टमेंट में ना अकाउंट्स की पोस्ट पे काम करता रहा हूँ, और उसी पोस्ट पे मैं रिटायर हुआ हूँ। और देखिए, अकाउंट्स में मैंने बड़े बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा होता है, अपन अपने तरफ संस्कार लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ना करना वो तो बच्चों पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने अपने संस्कार देने में और उनको बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा, किसी भी मामले में मैंने समझौता नहीं किया। और अभी क्या है, अब बच्चे सेटल हो गए, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना दायित्व निभा लिया, तो अभी मैं क्या है रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। अब रिटायरमेंट लाइफ में आदमी खाली घर में बैठेगा तो क्या करेगा, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, समय का सदुपयोग करते हुए मैंने क्या है भाई, वर्तमान में ये अपना जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है रायपुर में
जी,
वहाँ पर एक NGO है समर्पण
जी,
मैं उस समर्पण में जुड़ा हुआ हूँ।
यहाँ पर हम आपको रोकेंगे, पहले एक गीत सुनेंगे और उसके बाद अच्छा। हम जानेंगे कि आप समर्पण के साथ कैसे जुड़े हैं और क्या क्या करते हैं। तो अपनी पसंद का एक गीत बता दीजिए।
तो मैडम जी, मेरा पहला गाना आपको फिल्म है उसने कहा था
जी,
ये 1961 की फिल्म है, और गीत बोले आहारिन जी के प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी को प्रीत लिए।
सर, सन के साथ साथ आपको सुर भी याद है, शब्द तो अलग बात है क्योंकि ये वो तो याद ही रहते हैं जनरली, लेकिन सुर भी आप बहुत अच्छा लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
झुमके ये प्यारे प्यारे गीत दिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की चिकनी की, झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए,
झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की चिकनी की,
सपनों की बारा झूमे,
कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आँखों में सपनों की बारा झूमे,
दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे,
आहा झुमके ये प्यारे प्यारे गीत ले, आई रात सुहानी देखो प्रीत ले,
झुमके ये प्यारे प्यारे गीत दिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए,
नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की चिकनी के, झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे,
हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे,
मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे, आहा झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए, रात सुहानी देखो प्रीत लिए, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की चिकनी की, झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
आप बता रहे थे कि आप एक एनजीओ समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये संस्था क्या काम करती है?
अच्छा देखिए, मैं फिर बता दूं, मैं इस संस्था से 2008 से जुड़ा हूँ
जी,
लेकिन अभी कोरोना शुरू हुआ मार्च 2020 में, तो दो साल अभी अब फिर कोरोना दूर हो रहा है
जी,
तो दो साल तक मैं क्या है इससे दूर रहा
जी।
और अभी ये समर्पण का उद्देश्य क्या है, ये क्या है, जो मेघालय के परिसर में हमको जगह मिला है, वहाँ पर हमारे ऑफिस है
जी।
हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी पेशेंट होते हैं जो गांव से खासतौर से आते हैं
जी,
तो उनके लिए क्या हम रक्त उपलब्ध कराते हैं ब्लड
जी।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इतना रक्त होता नहीं है, हम उनसे क्या बोलते हैं कि आप अपना कोई भी ग्रुप दे दो, अगर जो भी आपको अवेलेबल है और आप जो पसंद करते हो वो हम क्या ब्लड देंगे आपको, उसको ट्रांसफर करा के अपडेट देंगे आपको
जी जी।
तो हम लोग यह काम करते हैं, एक तो ब्लड का काम करते हैं
जी,
और दूसरा जो वहाँ के मरीज जो आते हैं बाहर से
जी,
उनके जो परिजन होते हैं उनके लिए भोजन के लिए
जी,
हालांकि भोजन के लिए हम 10 रुपये का कूपन देते हैं, सिर्फ 10 रुपये का एक कूपन, 10 रुपये देते हैं कूपन देते हैं, वो भर पेट वो भोजन कर सकते हैं
जी,
और उनको अपना ये ब्लड का और दूसरे दवाइयाँ देते हैं, हमको जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध होती हैं
जी जी,
वो दवाइयाँ हम देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारे समर्पण का, ये हमारा मकसद है
जी। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि खून की कमी की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई बार डेथ भी हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में लोगों को समझाना कितना कठिन होता है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको जो भी ब्लड चाहिए उसके बदले में आप ब्लड दीजिए और ब्लड बैंक से ब्लड लीजिए, ये समझाना आम लोगों को कितना कठिन पड़ता है, आप उसके बारे में भी प्रकाश डालिए, क्योंकि जितने हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो इस बात को समझ सकें कि खून कितना जरूरी हो जाता है कुछ कुछ केसेस में चढ़ाना।
मेरा अनुभव बता रहा है, लोग क्या है रक्त के लिए तो ऐसे लगते रहे जैसे रक्त लिए मैं पानी दे रहा हूँ
जी,
मेरे पास ब्लड देंगे
जी,
जब मैं उनसे ब्लड मांगता हूँ कि आप ऐसा करिए, आपको अगर कोई नेगेटिव चाहिए, ओ नेगेटिव चाहिए, बी नेगेटिव चाहिए, तो आपके पास आपके परिवार के पास जो भी ब्लड है चाहे ए पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो वो आप हमको दे दो, और आपका हमको जो आपको जरूरत है हम आपको दे देंगे
जी।
तो मैडम उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं होते
जी,
वो बोलते हैं खासतौर से गांव के क्या वो शहर के लोग पर फोन आएगा कि भाई आपको हमको ब्लड की जरूरत है, लेकिन हम जब बोलते हैं कि हम एक्सचेंज करवा देंगे आप अपना ब्लड कोई भी दीजिए, तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते।
तो इसका कारण क्या होता है, क्यों तैयार नहीं होते
वो? उन्हें तो एक तो चाहे उन लोगों में ऐसा न जाने क्यों ऐसा भ्रम बैठ गया है कि हम अगर ब्लड देंगे तो हमको कमजोरी आ जाएगी, सबसे बड़ी है
जी।
और क्योंकि हम बोलते हैं हमारे गांव के लोग तो वो बोलते हैं कि हमारे लड़का अगर गांव का देगा ये खाने कमाने वाला एक ही है, और ये अगर खून दे देगा तो फिर ये कमाएगा खाएगा क्या? तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, और डॉक्टर अगर बोलेगा कि ये खून नहीं दे पाएगा तो मैं उसको खून देने के लिए कभी राजी नहीं करूंगा
जी जी। और तो मुझे लगता है कि उनको ये भी समझाना पड़ता होगा कि जो खून हम जितना खून हम लेते हैं वो कुछ ही दिनों में वापस बन जाता है।
वो अरे सब समझाते हैं कि ये आपका खून तो दोगे 24 घंटे के अंदर आपको फ्रेश खून मिल जाएगा बिल्कुल बढ़िया
जी जी,
आप तो अभी खून दे रहे हो आपको ताजा खून रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वो समझते नहीं है
जी जी।
वो तो उसके लिए मैंने आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़का आया 25 साल का युवा, उनकी माता जी को खून चाहिए था
जी,
तो उन्होंने कभी हम माता जी को खून चाहिए, तो हमने कहा आप खून दे दो और आपकी माता जी को जो खून चाहिए वो खून हम दे देंगे
जी।
तो उन्होंने कहा नहीं मैं खून नहीं दे पाऊंगा, मैं खून दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमने उसको बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माना, और वो ये आखिर में उसने ये बोला कि आपको अगर खून देना हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं।
मतलब नौजवानों के अंदर भी इतना भ्रम और इतनी अज्ञानता है कि वो वैज्ञानिक सोच अपने भीतर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही पढ़कर उसको अपना जो जहन है उसको खुलेपन में नहीं ला पा रहे हैं। परिवार का सदस्य अगर और कठिनाई में पढ़ता है तो पढ़ता रहे, लेकिन वो अपने आप को कठिनाई में डालना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में है।
वो अपने आप को कठिनाई में नहीं डालना चाह रहे हैं
जी।
लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ अपने माता जी के लिए वो तैयार नहीं, और आखिरी में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि आपको देना हो तो वरना कोई बात नहीं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपना मानवता का परिचय देखे। अभी ये अगर ऐसा हट कर रहा है तो अपने उसकी माता जी का क्या गुनाह है?
जी 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 सही बात है।
तो हमने जो ब्लड उसने नहीं दिया, फिर भी उसको जो जरूरत थी वो ब्लड हमने दे दिया।
तो एक बहुत बड़ी बात हमारी और आपकी बातचीत से सामने आ रही है कि खून जब हम डोनेट करते हैं तो हम एक जिंदगी बचाते हैं, और खून देने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती बल्कि फ्रेश ब्लड बढ़ता है। तो ये बात सुनने वाले सभी समझे, और अपने आसपास अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो घबरा रहा हो उसे भी समझाएं। तो इस अच्छी सी और प्रेरणादायी बातचीत के बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें बता दें।
तो मेरा दूसरी फिल्म है जाल, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी, और इसमें देवानंद और वो अपना गीता बाली,
गीता बाली जी।
तो इसके बोल हैं, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुलझा दिल की दास्ता। लेकिन ये गाना ये सोलो सॉन्ग नहीं है, ये ड्वेट है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में।
जी जी
ड्वेट, हाँ ये ड्वेट है
जी जी। उसमें एक सैड वर्षन लता जी के, जी जी जी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे रतन जैन जी जो है वो प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अभी रिमझिम की बारिश के बाद ये रात ये चांदनी चांदनी की बात हो रही है। तो गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद इनके शौक के बारे में पूछेंगे। आइए सुनते हैं।
ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बाहर की फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की द दास्तां। बहारे हैं जाती बहारे हैं उठती जवानियां, जाती बहारे हैं तारों की छाँव में कहने कहानियां। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। दास्तां दास्तां
बहुत ही सुंदर गीत था आपका। और रतन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या क्या हैं और रेडियो से आप कब से जुड़े हैं?
मैं रेडियो से 1973 से जुड़ा हूँ।
जी जी,
जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था तब से मैं अपना, उस समय क्या हुआ अभी तक, उस समय वो जैसे वो रेडियो आते थे बिजली के बल्ब वाले,
जी जी
हाँ, वो रेडियो मैं सुनता था। और उसमें 1973 में मैं रेडियो सुलोन का मैं बहुत फिल्म था, रेडियो सुलोन करता था। तो 1973 से मेरे को रेडियो को शौक लग गया
जी। और अपने बचपन के बारे में बताएं कि क्या क्या शौक रहे और बचपन कैसे बीता और कैसे आप ये संगीत, और ये मैं आपसे बातचीत करते हुए समझ रही हूँ कि सन 1961 की फिल्म है, सन 1952 की फिल्म है, ये सारी चीजें आपको याद हैं, तो अपने बचपन के बारे में भी कुछ बताइए कि ये कैसे डेवलप हुआ कि ये सारी चीजें आपको अभी तक याद हैं।
अच्छा, वो देखिए मेरा बचपन जो है ये अपना क्या है, मेरा बचपन मालवा, एमपी का मालवा एक छोटा शहर है सीहोर
जी।
और ये सीहोर में क्या है, गेहूँ का बहुत उत्पादन अच्छा होता है और वहाँ पर जो गेहूँ होते हैं शरबत गेहूँ वो काफी फेमस है
जी।
और इसके अलावा वहाँ पर क्या है गन्ने की भी फसल होती है और वहाँ पर क्या है शुगर का कारखाना भी है
जी।
और मेरा बचपन जो 9th क्लास तक मैं जो है मैं वहाँ सीहोर में ही रहा हूँ। और सीहोर में क्या है बचपना था, तो बचपना जो है बोलते ना बचपना बचपन हर गम का बेगाना होता है
जी जी।
मेरा बचपन जो है वो सीहोर में बीता
जी।
और एक वाक्य, हमारा बचपन बड़ा बचपन, बच्चे तो शरारती होते हैं, तो मैं एक अपना वाक्य सुनाता हूँ
जी।
तो मैडम जी वहाँ पर क्या हुआ था, सीहोर में, सीहोर से थोड़ा दूर है ना
जी जी,
वो एक वहाँ पर क्या है विष्णु शेठ का बगीचा हुआ करता था।
अच्छा,
उस बगीचे में बगीचा है तो वहाँ पर फ्रूट सब होते हैं। तो उस वक्त हम लोग जब 8-10 साल के थे
जी,
तो हम अपने दोस्तों के साथ क्या हुआ एक बार वहाँ पर, वो जो हम लोग उसमें दी बोलते हैं, अपन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो बोलते हैं जाम
जी जी,
तो महाराष्ट्र में अमरूद बोलते हैं
जी।
तो एक बार हमारा क्या हुआ, 4-5 दोस्तों की टोली वहाँ पर ढाबा बोल दिया हमारे बगीचे में
जी।
अब हम तो क्या बच्चे हैं, जैसे हमारे अपने इलाज है, अब मत तोड़ रहे हैं, अब वो तोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, वहाँ का जो चौकीदार था
जी
उसको आहट हुई, तो उसने देखा कि यार ये बच्चे लोग इस बच्चे की शरारत कर रहे हैं और फल फ्रूट तोड़ रहे हैं। तो वो क्या है, वो तो है वो हमारे पीछे डंडा लेके भागा। अब वो क्या है, हम जान तोड़ के जैसे सर सपाटे भाग भूके उसके हाथ में नहीं आए और भागे बाहर आ गए और फिर दूर जाके हम लोगों ने अपना एक इकट्ठे होकर एक जगह बैठकर और जो हमें बीत हो रहे उसका बड़ा आनंद लिया, मजे से खाया। तो ऐसी बचपन में शरारतें होती थी।
तो ये देखिए, ये बोलने में तो ठीक नहीं लगता है कि हमने फलाने बगीचे किसी और के बगीचे से खाए, लेकिन उस बीह का स्वाद बहुत मीठा लगता है जो इस तरह से खाई जाती है। तो वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होता है, उस समय उनकी गलतियां जो होती है वो खाने पीने की चीजों के लिए हम देखते रहे, माखन चोर श्री कृष्ण भगवान जी भी रहे तो इसे माफ करते हैं। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले ये आपकी पसंद का गीत हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे।
तो मेरी तीसरा गाना है हाउस नंबर 44, ये क्या है 1955 की पिक्चर है
जी,
गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे चाहिए लुधियान
जी
ने और संगीत है एच डी बर्मन जी का
जी।
और गीत के बोल है फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं तू।
तो सपनों की बाहें फैली हुई हैं, बहुत ही सुंदर गीत आपने पसंद किया है, आपको सुनवा रहे हैं ये। जमाने में जब लोग ये कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये उम्र का तकाजा है कि भाई भूलते हैं, लेकिन आप तो एक एक चीज याद है कि कौन से सन की फिल्म है, किसने गाया है और इसके गीतकार कौन है, ये सारी चीजें आपको याद हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से याद हैं। तो ऐसे याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए, ये हम अपने और अपने श्रोताओं सबकी तरफ से आपसे प्रश्न कर रहे हैं।
तो ये देखिए, जो मेरी याद है उसके बारे में मैं पहले तो आपको बोलना चाहता हूँ कि
जी
मुझे 1950 से लेकर 1975 की अवधि की फिल्में,
जी
वो फिल्में किस वर्ष रिलीज हुई,
जी
उस फिल्म के गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है,
जी
और वो फिल्म किस नायक और नायिका पे फिल्माई गई है।
जी जी
मुझे मोक जवानी याद है। अगर मीनू जी आप अगर कुछ मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं तो आप मेरे से पूछ सकती हैं कि रतन जी, 55 की ये पिक्चर कौन सी पिक्चर आप बता दीजिए। चलती का नाम गाली
जी
वही
जी
तो बोली, और पूछिए मुझसे कि इसका गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है और गायक कलाकार कौन है, कौन किस हीरो हीरोइन पे फिल्माई गई है, आप पूछ लीजिए मेरे से, उसका आप देख लीजिए टेस्ट करके कि
जी जी
वो
इसी
सही है।
अच्छी याददाश्त का राज हम जानना चाहते हैं।
तो आप राज ये जानना चाहते थे जैसे क्या है। मैं तो इस चीज को मानता हूँ, ये जो मेरे की जो याददाश्त है उसको मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट।
अच्छा
मीनू जी अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो
जी
वो अपने लिए जरा भी असंभव या तकलीफदायक या कठिन नहीं लगता, दूसरों
जी
को जरूर लगेगा। अब दूसरा ये सोचेंगे यार, ये रतन जी को 50 से लेकर 75 तक कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई, इसके गीतकार कौन है, संगीत कौन है, बाप रे, उनके लिए बहुत कठिन होगा।
जी
लेकिन क्योंकि मैं इसका इतना दीवाना हूँ तो वो चीज मेरे लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि मेरा इसे मेरे रग रग में ये घुला हुआ है
जी
इसका शौक। तो ये तो मीनू जी ये सबसे बड़ा कारण है, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मुझे ये सब मोक्ष याद रहते हैं।
अच्छा, तो मतलब आप हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि होती है किसी चीज में, तो वो चीजें आपको विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक याद रहती हैं और मेमोरी में हमेशा स्टोर रहती हैं और वो आपको पूरी जिंदगी याद रहती हैं उसी तरीके से जैसे कि पहली बार पढ़ा हो। तो
जी
ये
हाँ
बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं कि हाँ हमें ये याद नहीं है, तो उन्हें ये समझना होगा कि वो चीजें याद नहीं है जिसमें उनका इंटरेस्ट कम है। जी है ना, आप ये समझाना चाह रहे हैं।
मैं सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा हूँ,
जी
बच्चे लोग आजकल के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं
जी
उनसे भी मैं बोलता हूँ, अगर आप पढ़ाई को जो है उसको आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए बोझ है, उस पढ़ाई से आप प्यार कीजिए,
जी
आप उसको उसमें दिलचस्पी दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा उसको याद करना।
जी 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 ये भी है कि जिसमें रुचि हो वो पढ़े तो वो भी याद हो जाएगा, ये भी बात होती है।
हाँ
जी
ये बात होती है।
तो यहाँ
अब
पर रोकते हैं
देखिए
सर आपको, और एक गीत की फरमाइश हम आपसे करते हैं।
तो अब मेरा दूसरी गाना है फिल्म प्यासा गुरुदत्त जी की,
जी
जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गीत लिखे हैं साहिर साहब ने, संगीत
जी
है एच बर्मन का और आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब की और नीता रफी,
जी
और गीत बोल हैं हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो।
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो,
हम नींद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो,
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। इन जुल्फों में गूंदे फूल मोहब्बत के
जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो
इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के
जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे
हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो
हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे
हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर
इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो
हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर
इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो
हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो
रतन जी अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अर्पा रेडियो से आप कब से जुड़े हैं और अर्पा रेडियो के बारे में हम चाहते हैं कुछ कहें कुछ सुझाव दें और अगर कुछ कमियां हैं तो उनके बारे में भी बताएं
अर्पा रेडियो के देखिए अर्पा रेडियो से हालांकि अभी देखिए अभी अप्रैल में था क्या स्थापना दिवस
जी जी
तो हालांकि मैं तो एक साल से जुड़ा हूँ
जी
लेकिन मैं दूसरे गुरु का मेरे को नियमित नहीं सुन पाता हूँ
जी
लेकिन मेरे को अल्फा रेडियो के जो पसंदीदा कार्यक्रम है
जी
एक तो हफ्ते के श्रोता
जी
श्रोता की कलम से
जी
स्मृति गंगा
जी
अल्फा शीर्षक और अनिश के संग नितांत पसंद ये मेरे पसंदीदा कार्यक्रम है अच्छा और अब देखिए एक बार और बोल रहा हूँ तो ये जो छत्तीसगढ़ के आप कार्यक्रम जैसे स्मृति गंगा वगैरह मुझे छत्तीसगढ़ के जो गीत हैं लोकगीत वो मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि इस गीतों में मुझे क्या है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की महक मिलती है
जी
इस गीतों में तो मुझे ये छत्तीसगढ़ के लोकगीत मेरे को बहुत ही प्यारे लगते हैं और आपका अल्फा रेडियो जो है वो इस चीज से तो बहुत गुरु नहीं है हमेशा छत्तीसगढ़ के संस्कृति से हमको अवगत कराता रहता है
जी जी
तो इसके कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं
तो और कोई सुझाव देना चाहेंगे सर
नहीं मैं कह रहा हूँ जो भी अभी काम जो अरिश जी कर रहे हैं और आप लोग जो कर रहे हैं आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि आपके काम से हर श्रोता संतुष्ट होगा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से और भी कोई काम में संशोधन किया जाए जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है बहुत अच्छा काम चल रहा है
बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर
तो मीनू जी आपको श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद
सप्ताह के श्रोता हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे अर्पा रेडियो पर
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।